आप सब लोगों को मेरी नमस्ते। और आज हम एक युग की कहानियों में एक और मज़ेदार कहानी सुनते हैं। और आज के लिए खास बात है कि मैं लाइव म्यूजिक बजाऊंगा बैकग्राउंड में।
अरे वाह, थैंक यू युग। हाँ, तो युग की कहानियों में आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ काकोरी कांड की। ये एक सच्ची घटना है और इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है सारा लाइव युग बजा रहा है। तो काकोरी कांड हमारे इतिहास में 1925 में यानी 1925 की एक सच्ची घटना है। आपने चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का नाम तो सुना होगा, है ना योगी? तो ये थे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद। अगर आपने उनकी फोटो भी देखी हो तो जो जनेऊ डाल के और एक मूछों पे ताव दे के और एक पिस्टल रखते थे अपने गमछे में, धोती में, तो वो बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। सरदार भगत सिंह की आपने मूवी भी देखी होंगी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, और कई सारी मूवी भी आई थी। तो ये उन्हीं से रिलेटेड कहानी है। 1925 में पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने एक एसोसिएशन बनाई जिसे बोलते थे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। वो एक क्रांतिकारी पार्टी थी। क्रांतिकारी पार्टी क्यों बनाने की उन्हें ज़रूरत पड़ी? क्योंकि एक तरफ तो गांधी, महात्मा गांधी लड़ रहे थे, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि पब्लिक डोमिनियन की मांग करते थे, यानी कि ठीक है हम राज अंग्रेजों का रहेगा लेकिन सरकार हम चलाएंगे और शांति से करेंगे। लेकिन उसके कारण बहुत सारे लोग मारे भी जा रहे थे। और कितनी बार आज़ादी मिलते मिलते, जैसे असहयोग आंदोलन उन्होंने एक चलाया था लेकिन वो वापस ले लिया था बाद में, फिर खिलाफत आंदोलन, ऐसे बहुत सारी चीज़ हुई थी। तो दो दल बन गए थे, एक नरम दल एक गर्म दल। वर्ल्ड वॉर वन के बाद और वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जहां पे ब्रिटिश एम्पायर कमज़ोर पड़ गया था और एक दल ऐसा हो गया था कि हम लोग मांग के क्यों ले रहे हैं आज़ादी, हम, ये हमारा देश है, ये थोड़े से अंग्रेज हैं, हम इन्हें भगा के और हम अपने आज़ादी लड़ के ले सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रयास हो रहे थे, उसी में एक प्रयास था HRA बनाने का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसमें कौन कौन थे? राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ये तीन नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसके सदस्य थे। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे। उन्होंने क्या किया कि हमें अब एक एसोसिएशन बनाने के लिए आपको पैसे तो चाहिए, कोई भी अगर ऐसे कंपनी रन करते हो तो उनके मेंबर्स के लिए आपको खाना पीना भी, बुक्स भी, पोस्टर्स भी छपवाने होते हैं, ट्रैवल का खर्चा भी है, फिर आपको सशस्त्र क्रांति करनी है तो आपको हथियार भी चाहिए, तो पैसा तो बहुत चाहिए था। और दूसरा कारण था कि अंग्रेज़ों को चुनौती देना, ये बताना कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, हम अपना अधिकार लड़के ले सकते हैं। और तीसरा कारण था कि उन्हें पब्लिक सिंपथी भी मिलती। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि एक ट्रेन जा रही थी और उसमें हिंदुस्तान का जो खजाना था लूटा हुआ, पैसों के थैले थे, वो खजाना जा रहा था जो कि अंग्रेज इंग्लैंड भेज देते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम इस पे अटैक करेंगे और हम ये सरकारी खजाना लूटेंगे क्योंकि ये हमारे ही पैसे हैं, हमारे देश के लोगों के पैसे हैं। इससे एक तो सीधा सीधा सरकार के ऊपर जोर पड़ेगा, बदनामी होगी और हमें पब्लिक सिंपथी मिलेगी और पैसे भी काम आएंगे। तो उन्होंने प्लान बनाया। एक सचिन सान्याल थे जो, वो तो चढ़ गए ट्रेन में। और आपने कभी देखा हो ट्रेन में एक इमरजेंसी चेन होती है, तो आप उसको कभी भी अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप चेन खींचते हो तो ट्रेन रुक जाती है। तो उन्होंने देखा कि एक स्टेशन आया काकोरी, नाम था उसका, इसीलिए उसको काकोरी कांड कहते हैं। काकोरी आते ही सचिन सान्याल ने चेन खींच दी, चेन खींची तो गाड़ी रुकी, रुकते ही जो उनके साथी थे उन्होंने जाके इंजन में गार्ड को और ड्राइवर को कब्जे में ले लिया, और उन्होंने और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जिसमें उनके पास जो खजाना था सीधा उसी पे अटैक किया। अब वहाँ पे कुछ गार्ड भी थे और कुछ लोग और आए, उनके ऊपर भी अटैक करने लगे, तो इसमें वो सारा खजाना लूट के ले गए, जिसमें 4600 रुपीस थे, 4600 रुपये, और उस टाइम के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा थे, और उसमें कुल मिला के लगभग 8 आदमी भी मारे गए। और इससे एचआरए की बड़ी प्रसिद्धि हो गई कि चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा बहादुरी का काम किया, और अंग्रेज़ जो थे वो बहुत खार खा गए उनसे कि भई ये तो इन्होंने विद्रोह किया है, इन्हें हमें पकड़ना चाहिए। फिर उसके बाद बड़े सारे छापे पकड़े मारे गए, और वो सब लोग जो थे अलग 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 जाके चिप भी गए थे, और उनमें जो सबसे प्रमुख थे वो रामप्रसाद बिस्मिल थे, जिनके आप गाना भी सुनते हो एक, वो बड़ी अच्छी कविताएं लिखते थे, उनका सबसे प्रसिद्ध गाना ये था, जो कविता भी थी जिसे गाया जाता था उस टाइम पे बहुत ज़ोर से, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यानी कि अब तो हम सर कटाने पे जान देने पे के लिए तैयार हैं अपने देश के लिए, हम देखेंगे कि मारने वाले की बाजुओं में कितना जोर है, अब हम लड़ने पे आ गए हैं, अब हम मरेंगे तो लड़के मरेंगे और मार भी देंगे। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और फिर कोई उनसे पूछता है, अच्छा क्या बिगाड़ लोगे तुम, इतनी बड़ी सरकार का, इतने अंग्रेज़ों का क्या करोगे, तो वो कह देते थे कि वक्त आने पर तुझे बता देंगे हम है आसमां, अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की एक कविता, और भी कई सारी हैं, और ऐसे ही थे अशफाक उल्ला खां और सचिन सान्याल और बहुत सारे लोग थे। तो अलग अलग जगह पे फिर छापे पड़े, और छापे पकड़ के वो बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट गिरफ्तार हो गए, और कोई अलग अलग जगह पे छिपे हुए थे वो, कोई कानपुर, कोई लाहौर, कोई लखनऊ, कोई मेरठ, कोई बंगाल, बस एक पंडित जी नहीं पकड़े गए थे। उसके बाद जो जो लोग पकड़े गए, 19 लोग पकड़े गए टोटल, उनमें से दो तो बन गए सरकारी गवाह, जिन्होंने उनके खिलाफ वो दे दी थी, अपने दोस्तों के खिलाफ गवाही दे दी, गद्दारी बन गए थे, और बाकी जो थे फिर 17 बचे, उनमें से 4 को फांसी की सजा दे दी। किस किस को? रामप्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्ला खां को, और एक थे रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहरी, इन 4 लोगों को तो फांसी की सजा हो गई। अब बचे कितने? 17 में से 4 भी चले गए, तो पीछे 13 लोग रह गए। अब उन्हें भेज दिया गया जेल, अलग अलग टर्म दे दिए। अब जेल में जाके उन्हें कहा कि भी तुम जेलियों को, उसके कैदियों के कपड़े पहनो, और उन्हें उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता, खाना भी ढंग का नहीं होता था। तो उन्होंने विद्रोह किया जाते, उन्होंने कहा कि भाई हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हम वी आर पोलिटिकल प्रिजनर्स, यानी कि हमने तो सरकार के खिलाफ काम किया है, हमारा देश है, आप हमारे देश में आके हमारे ऊपर राज कर रहे हो, आप हमारे ऊपर अत्याचार करते हो, हमने तो आपकी सरकार के खिलाफ किया, हम आपकी सरकार के गुनहगार हैं, हम किसी अपनी जनता के, अपने देश के गुनहगार नहीं है, तो इसलिए हमें हमारे साथ पॉलिटिकल प्रिजनर जैसा व्यवहार होना चाहिए, कि हम नॉर्मल कैदी की ड्रेस ना पहने, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह नॉर्मल कपड़े पहने, हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो। वो उन्होंने किया नहीं, तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी। हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल। भूख हड़ताल कैसे? यानी कि खाना नहीं खाना, भूखा रहना, कि जब तक आप हमारी मांगे नहीं मानोगे और जब तक आप हमारे हमें अच्छा खाना नहीं दोगे, इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करोगे, हम खाना नहीं खाएंगे। एक दिन हुआ, दो दिन हुए, गेस करो कितने दिन हुए युग। आप कितने दिन कोई रह सकता है बिना खाने के?
Around 7 months was my estimate they survived.
यू का एस्टिमेट है लगभग एक महीना क्लोज। अरे एक महीना बिना खाने के रहना बहुत बड़ी बात होती है। आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं, बीमार हो जाओगे, आपका कीटोसिस में चली जाती है बॉडी। तो लेकिन वो लोग कुल मिला के 41 दिन तक हंगर स्ट्राइक पर रहे थे। उससे क्या हुआ, उनकी खबर धीरे धीरे बाहर पहुंचने लगी, सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा कि कुछ ऐसे जो नौजवान हैं जो भी मरने से नहीं डरते। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, उनको बर्फ़ की सीली ला के, बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ के ऊपर लेटा के खूब सारा मारते। उन्होंने नहीं खाया। पहले अंग्रेज़ों ने सोचा 7-8 दिन नहीं खाएंगे, उसके बाद अपने आप खाएंगे, वो भी नहीं। फिर उन्होंने उनको अलग अलग जाके से बहकाया कि अरे उसने तो खा लिया, या तुम खा लो खाना, उन्होंने तो तुम्हारा साथ छोड़ दिया, एक दूसरे से बात नहीं करने देते। उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, कोई नहीं माना। वो अपने इरादों के पक्के थे, एक दूसरे पर भरोसा था, उनकी आपस में समझदारी भी थी और एक दूसरे के साथ उनकी टीम जो थी, टीम स्पिरिट थी, वो भी ज़्यादा अच्छी थी। फिर उन्हें उनके मुंह में ज़बरदस्ती दूध डालने की कोशिश की गई, बुलाते उन्हें, पीटते कि दूध करो, नहीं लिया। फिर एक दिन उन नाक में उनके ट्यूब डाल के उससे दूध डालने की कोशिश करी, वो भी नहीं जाने दिया उन्होंने। एक अंग्रेज ने क्या किया, उसका ज़बरदस्ती मुंह खोल के, ऐसे दांत मुंह खोल के रुक करने कोशिश की, तो उसने उनकी उंगली काट दी, लेकिन एक बूंद दूध अंदर नहीं जाने दिया, खाना नहीं जाने दिया अंदर। अब उन्होंने क्या किया, पानी भी देना बंद कर दिया कि इनको इतना तड़पाओ, इतना परेशान करो कि परेशान हो जाए। वो चिल्लाए कि यार पानी तो दे दो कम से कम, खाने के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन जो आप 30 दिन बिना खाने के हो, फिर आपको पानी भी ना दें। लेकिन उन्होंने अपना मनोबल नहीं तोड़ा, कोई नहीं। फिर एक दिन क्या किया उन्होंने, धोखे से एक उसमें पानी, और पानी में ना मिर्च का पानी रख दिया, तो उनमें से एक ने क्या किया, जैसे ही पानी पिया तो गले में इतनी मिर्ची लगी, एक तो भूखा आदमी, ऊपर से पानी ना मिले, और लाल तेज मिर्ची थी ऐसी, तो गला उसका बिल्कुल छिल गया। तो ऐसे ऐसे अत्याचार किए, बट ओवरऑल 41 दिन के बाद जब बाहर ये सारी चीज़ें अखबार में छपने लगी, उन्हें पता था हमारा मनोबल बढ़ता है, कि आप हमारे शरीर को तोड़ सकते हो, आप हमारे मनोबल को, हमारे स्पिरिट को, हमारे आत्मा को नहीं तोड़ सकते हो। उसके बाद अंग्रेज़ों को आखिर में हार के उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें उनका सम्मान देना पड़ा, यानी उन्हें उनके साथ पॉलिटिकल प्रिजनर का व्यवहार करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को काले पानी भेज दिया था और बहुत सारे लोगों को बहुत लंबी जेल में भेज दिया। तो उससे क्या किया कि HRA जो बनी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसका बल, मनोबल तोड़ने का, उसके सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स को ख़त्म करने का प्लान था ये, लेकिन वो फिर भी नहीं हुई। उसमें नए और जो नौजवान लोग थे, जिस उनमें प्रमुख थे राजगुरु, भगदेव, सुखदेव, भगत सिंह, ये पंडित जी के साथ मिलके उन्होंने उसको दोबारा से और मजबूती से उठाया। और जब अगली बार उन्होंने बम धमाका किया था असेंबली में, उसमें उन्होंने और अच्छी प्लानिंग के साथ काम किया। वो कहानी मैं आपको अगली बार सुनाऊंगा कि जिसमें राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी भी हो गई थी। तो ये थी आज की कहानी काकोरी कांड की। अभी आज के लिए इतना ही काफी है, और हम उन क्रांतिकारियों को और अपने बलिदानियों को जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए, उन्हें शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और युग का धन्यवाद करते हैं इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए। धन्यवाद युग।
यू वेलकम।
गुड नाइट।
गुड नाइट, बाय।